أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا قرآن کریم میں خشیت کے مضمون کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے منفی پہلو پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے مثبت پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. تمام آیات پر جن میں خشیت کا ذکر ہے ایک نظر ڈال کر غور کیا جائے یا اس کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ خشیت دو قسم کی ہے, ایک انسانوں کی اور ایک اللہ کی, اور تمام بنی نو انسان اس لحاظ سے دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں, ایک وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ایک وہ جو لو انسانوں سے ڈرنے والے ہیں, اور پھر اللہ سے نہ ڈرنے والے کی آگے ایک قسم بیان فرمائی گئی کہ وہ انسانوں سے ڈریں یا کسی اور چیز سے, وہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اس مضمون کو اور وسعت دے دی گئی کہ خدا کے سوا ڈرنے والے کچھ انسانوں سے ڈرنے والے ہیں, کچھ غیر انسانوں سے, بعض قدروں سے, بعض فرضی ہلاکتوں سے, کوئی جن سے ڈر رہا ہے, کوئی بھوت سے ڈر رہا ہے, کوئی جھوٹے خداؤں سے ڈر رہا ہے. تو غیر اللہ سے ڈرنے والے بہت ہی ایک وسیع گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے, وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. دوسرا, قرآن کریم نے ہدایت کو پابند فرما دیا اللہ کے خوف کے ساتھ اور فرمایا کہ نصیحت کے ذریعے تم غیر اللہ سے ڈرنے والوں کو جب اپنی طرف مائل کرو گے تو جب تک غیر اللہ کا خوف ان کے دلوں پر غالب ہے وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. اس لیے تبلیغ کا ایک نہایت ہی عمدہ نقطہ بیان فرما دیا اور تبلیغ کے لیے راہ کو آسان کرنے کا ایک طریق سکھا دیا. صرف وہی نصیحت پکڑتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے سوا دوسرا نصیحت نہیں پکڑتا. اس مضمون کو قرآن کریم نے بارہا مختلف طریق پر بیان فرمایا, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى, جیسا کہ فرمایا إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू नसीहत तो करता है और करता रहेगा, लेकिन तेरी नसीहत से फायदा वही उठाएगा जो खौफ खुदा रखता है। इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, कुरान करीम सिर्फ उसी के लिए कारामद नसीहत है जो खुदा का खौफ रखता है। तो इस मज़मून को मुख्तलिफ रंग में कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर बयान फरमाया गया है। तो खुदा से खुदा का खौफ रखने वाले जब अपने दायरे को वसत देते हैं और बेखौफ लोगों को या खुदा के गैर का खौफ रखने वालों को अपनी तरफ बुलाते हैं, तो उस वक्त खुदा ताला ये नुक्ता समझा रहा है कि पहले खुदा का खौफ उनके दिल में पैदा करो, फिर वो हदायत पाएंगे, फिर वो तुम्हारी नसीहत सुनेंगे। जब तक लोगों का खौफ गालिब है वो हदायत पा ही नहीं सकते। चुनाचे दुनिया में आप जायजा लेकर देखें, हदायत से पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह लोगों का खौफ है। बाज़ दफा कौमों की कौमें दिलों में कायल हो चुकी होती हैं और तस्लीम कर लेती हैं कि सच्चाई उनके साथ है, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह का खौफ गालिब है इसलिए वो हदायत पर आमादा नहीं होती, जरूरत नहीं पाती कि वह हदायत को इख्तियार करें। खौफ इन मानों में एक मैग्नेट का काम देता है, एक मिकनातीसी कुव्वत रखता है। यहां जो खौफ का मजमून है वो धकेलने के मानों में नहीं है बल्कि कशिश के मानों में है। मिकनातीस की दो कुव्वतें होती हैं, एक रिपल्शन की यानी वो धक्का देती है, और एक कुव्वत जाज़बा है जो खींच लेती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खौफ भी बाज़ दफा कुव्वत जाज़बे का काम करता है और बाज़ दफा कुव्वत दिफा का काम करता है, धकेलने का काम करता है। और खुदा का खौफ हदायत की जानिब खींचता है बड़ी कुव्वत के साथ, और गैरुल्लाह का खौफ खुदा से दूर धकेल देता है और गैरुल्लाह की जानिब खींचता है। तो जब तक इन मिकनातीसी कुव्वतों की पोलराइजेशन आप दुरुस्त नहीं करते, जब तक इनका रुख सही नहीं करते, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी कुव्वत जिसका मुकाबला करने की दूसरी कुव्वतें राह नहीं पाती, उनका बस नहीं चलता, वो मिकनातीसी कुव्वत है। और आलम रूहानियत में, आलम दीन में भी ये इसी किस्म का साइंसी निज़ाम कार फरमा है। खुसूसन कुरान करीम के मुतालिया से तो हमें बहुत ही गहरा साइंसी निज़ाम मिलता है जिसकी तशबीह है आलम ज़ाहरी से, और कुरान का आलम बातनी भी उसके मुताबिक बहुत से गहरे साइंसी मजामीन अपने अंदर रखता है। उसी किस्म के कानून कार फरमा है। तो जो मर्ज हो उसकी दुरुस्ती ज़रूरी है, और मर्ज यही है हदायत से महरूम रहने में कि गैरुल्लाह का खौफ गालिब रहता है। तो बराह रास्त मर्ज को पकड़ना चाहिए। कोई मुबल्लिग कामयाब नहीं हो सकेगा जब तक पहले मर्ज को छील कर और साफ करके दिल से पाक ना करे और अलग ना करे, झंझोड़ा जाए, उनको खुलकर बात की जाए। और ये वो ऐसी बात है जिसके नतीजे में कोई मुनाफरत नहीं पैदा होती, कोई इश्तियाल अंगेजी नहीं हो सकती। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अच्छा तुम खुदा का खौफ दिलाते हो, मैं तुम्हें जूतियां मारूंगा या मैं डंडों से तुम्हें ठीक करूंगा। और जब तक खुदा का खौफ ना हो आपकी अगली बात कबूल नहीं हो सकती, और जब खुदा का खौफ हो जाए तो खुदा का खौफ आपके लिए एक साया पैदा कर देता है अमन का, आपके लिए दीवारें कायम कर देता है किले की, उस किले पर हमला नहीं हो सकता। तो कितना अजीम शान कलाम है जो मामलात की तह तक उतरता है और हर मामले में फिर इंसान की रहनुमाई फरमाता है। उसके बावजूद रिसालात जब पहुंचाए जाते हैं गैर कौमों को, तो कुछ ऐसे हैं जो खौफ खुदा पर आमादा नहीं होते, डराने के बावजूद वो अल्लाह का खौफ नहीं करते और गैरुल्लाह से मगलूब हो चुके होते हैं, उनसे भी वास्ता पड़ता है। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि जब तक वो खौफ ना कर ले उस वक्त तक तुम्हें पैगाम नहीं देना, ये तवज्जो दिलाता है कि पहले खुदा का खौफ पैदा करो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। चूंकि इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं जाहिरी कि मालूम हो जाए कि वाकईतन फलां के दिल में खौफ दाखिल हो चुका है और फलां के दिल में नहीं हुआ, इसलिए ऐसा इम्कान है, खुला इहतमाल है कि आप खुदा का खौफ दिलाने के बाद जब बात शुरू करें तो चूंकि खुदा का खौफ नहीं और बनी नौ इंसान का खौफ है इसलिए आपकी मुखालफत शुरू हो जाए। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तबलीग का राज सिखाया गया और आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझता था, और आपने सबसे पहले خوف خدا کی بات کی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، غیر اللہ کا خوف دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد پھر رسالات ربی یعنی اپنے رب کے رسالات کو، پیغامات کو آپ نے پہنچانا شروع کیا. اور چونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک بڑا طبقہ محروم رہ جاتا ہے خوف خدا سے، پھر ان سے خدا کا خوف دلانے والوں کو خوف شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ حملہ کرتے ہیں، وہ برا مناتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم اشتعال انگیزی کر رہے ہو، تم ہمارے باپ جس دادا کے دین کو غلط بنا رہے بتا رہے ہو اور کہتے ہو کہ یہ درست رستہ ہے، اور بات بات پر پھر وہ زودرنج ہو جاتے ہیں. آپ ان کو نیکی کی طرف بھی بلائیں تو وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ خدا کا خوف کرو اور غیر اللہ کا نہ کرو، تو یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو خطرات سے بے خبر رکھ کر یہ تعلیم دے رہا ہے. کیسی عظیم الشان سچی اور صاف گو کتاب ہے. بلاتا تو اسی طرف ہے خدا کہ غیر اللہ کا خوف نہ کرو اور صرف خدا کا خوف کرو، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات ضرور درپیش ہوں گے. چنانچہ اسی آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور پیغام پہنچانے کی وجہ بھی خدا کا خوف ہی ہوتا ہے. وہ خدا سے اپنے لیے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ان کے خوف میں خودغرضی نہیں پائی جاتی، وہ غیروں کے لیے بھی خدا کا خوف کھانے لگ جاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ایسے فرشتہ صفت انسانوں کا ذکر ہے جو غیروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور عالم ملائکہ میں ایسے ملائکہ ہیں جو اس بات پر وقف ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں جو امن کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے. تو فرماتا ہے کہ یخشونہ، خدا کا خوف کرتے ہیں، اسی لیے تو رسالات پہنچاتے ہیں، اور یہ خوف اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے کہ اپنے لیے بھی ڈر رہے ہیں اور غیروں کے لیے بھی ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے. فرماتا ہے اس کے نتیجے میں غیر اللہ سے ان کو خوف پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ جو امن کا پیغام دے رہے ہوں ان کو جواب میں خوف کا پیغام ملتا ہے، جو صلح کی ضمانت دے رہے ہوں ان کو جنگ کا پیغام ملتا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا تم صلح کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو اور ہم تمہارا علاج یہی ہے کہ تم سے جنگ کی جائے. تم چاہتے ہو کہ ہم امن میں آ جائیں، اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارے گھروں کے امن برباد کر دیے جائیں. اس مضمون میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ جو جن کو وہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ یہ چونکہ ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل ہیں، اس لیے خدا سے ڈرتے ہیں. اور جو بزدل ہوتا ہے اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. بزدل ایک سے ڈرتا ہے تو دوسرے سے بھی ڈرتا ہے. فرمایا کہ یہ ان کی صفت حسنہ ہے، یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کی بہادری کا ثبوت یہ ہے کہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتے. کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ غیر اللہ ان پر کیا قیامت توڑ دے گا. اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، فرمایا احدن اللہ. ان کے اس مضمون کو اور بھی وسعت عطا فرما دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تم سے نہیں ڈرتے، وہ کائنات کی کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. یعنی ہر اس خوف سے امن میں ہیں جو خدا کے علاوہ فرضی خوف یا غیر اللہ کی طرف سے حقیقی خوف دنیا پر آیا کرتے ہیں. وکفا باللہ حسیبا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کافی ہے ان کے لیے، حساب کرنے والا بھی، ان کا خیال رکھنے والا بھی، نیک نتائج پیدا کرنے والا بھی، ہر لحاظ سے اللہ ان کو کافی ثابت ہوگا. چنانچہ اسی مضمون کو ایک اور رنگ میں بھی بیان فرمایا گیا، اور خشیت الہی کو نیکی کی تعریف قرار دیا گیا، اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور ڈرنے والوں کے درمیان ایک حد فاصل قائم فرما دی. فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ، کہ ویسے تو مسجدیں سارے بناتے ہیں اور بظاہر آباد بھی کر دیتے ہیں، لیکن محض وہی لوگ ہیں جو عند اللہ مسجدیں بنانے والے اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. वह अकामत सलाता और नमाज को कायम करते हैं, वात जकाता और जकात अदा करते हैं, और ये सारी वो चीजें हैं जो जाहिरी अमाल से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन ये सारे अमाल कबूल सिर्फ उसी सूरत में होंगे, अल्लाह के नजदीक दर्जा तब रखते हैं, लम यख्शा इल्लल्लाह, वो शख्स जो ये सारे अमाल का अदा कर रहा है, बज़ाहिर मसाजिद भी आबाद कर रहा है, नमाजों की भी तलखीन कर रहा है और ज़कात भी वसूल कर रहा है या लोगों को देने के लिए तलखीन करता चला जा रहा है, नमाजें पढ़ता है और पढ़ने की तालीम देता है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर बहुत बड़ी नेकियां हैं। लेकिन अगर इस सिफत से आ रही है कि लम यख्शा इल्लल्लाह, खुदा के सिवा किसी और से नहीं डरता, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये सारे आमाल बातिल हो जाते हैं। सिर्फ वही लोग हैं जो खुदा के नज़दीक इस बात का इम्कान रखते हैं कि वो हदायत पा जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे, वो वही हैं जो इन सारी बातों के साथ अल्लाह का खौफ रखते हैं और गैर अल्लाह का नहीं रखते। अगर आप गौर करें इस मज़मून पर ज़्यादा तफसील से, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की अक्सर खराबियां, बल्कि अगर यह भी कहा जाए कि तमाम खराबियां, हाँ वो किसी जगह किसी शक्ल में सर निकाल रही हैं, क्यों पैदा होती हैं, तो एक जवाब उसका यह है कि अल्लाह का खौफ नहीं और गैरुल्लाह का है। जितने गलत सियासी फैसले दुनिया में हो रहे हैं, जितनी बड़ी तबाहियां आ रही हैं, उन सब का तजिया करके देखें तो यहीं जाकर तान टूटेगी। चुनाचे बाज मुल्क इसलिए कि अपने मुल्क के लोगों के ख्यालात से डर रहे हैं, ये फैसले कर लेते हैं कि फलां मुल्क पे हमला कर दें ताकि तवज्जो बढ़ जाए। वो जितना फसाद फैलेगा, जितना खून होगा, जितने मजालिम होंगे, जितना इंसान दुख उठाएगा, उसकी आखिरी वजह यह है कि खुदा का खौफ नहीं था और लोगों का खौफ था। और लोगों के खौफ बाज दफा आंखें खोल कर देखने के बावजूद कौमी रहनुमाओं को गलत फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं, और जितना यह खौफ बढ़ता जाता है उतनी बेख्तियारी होती चली जाती है रहनुमा की। चुनाचे बाज ऐसी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में जो अजीमुशान ताकतें हैं, इतनी अजीमुशान ताकतें हैं कि दुनिया की चोटी की ताकतों में वे शुमार होती हैं। लेकिन जब लोगों का खौफ उनके सामने आता है तो उनके रहनुमा नहायत बेताकत और बेहसियत होकर रह जाते हैं, शिकवे भी करते हैं, देखते हैं कि हम ये गलत काम करने पर मजबूर किए गए हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। चुनाचे कार्टर ने, जिमी कार्टर जो पहले सदर थे अमेरिका के, उन्होंने अपने हम असर रहनुमाओं के मुतल्लिक़ एक किताब बड़ी दिलचस्प लिखी है, उसमें वो अमेरिका के लीडरों की बेख्तियारी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि खौफ के नतीजे में कि हमारे अवामुन्नास की राय आमा किस तरफ जा रही है, अगर हमने उसके खिलाफ कोई फैसला किया तो हमारा क्या हशर होगा। अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट ये समझते हुए भी कि उनका ये फैसला अमेरिका के मफाद के खिलाफ है, वो फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके मुकाबले पर एक ऐसी किस्म भी है जिसको ना खुदा का खौफ है ना बंदों का खौफ है, वो इस किस्म से इस लिहाज से बेहतर हैं कि जो भी फैसले करते हैं वो अवामुन्नास से नहीं डरते, अपने मुल्क के मफाद में जो समझते हैं बेहतर वो कर जाते हैं। चुनाचे कार्टर के नज़दीक जितनी भी इश्तराकी दुनिया है ये उस किस्म में दाखिल है। वो कहते हैं यहां कामिल डिक्टेटरशिप होने की वजह से उन्होंने चूंकि राय आमा की परवाह कोई नहीं करनी, और राय आमा को ताकत ही कोई हासिल नहीं है, जब चाहे कुचल दें, जिस तरफ चाहे राय आमा को रुख मोड़ दें, और राय आमा कुछ और हो और ये कहें कि ये है तो इनकी बात मानी जाए, राय आमा की सुनी ना जाए। ये कैफियत चूंकि है इसलिए वो अपने मुल्क के मफाद में बहरहाल सही फैसला करने के मजाज हैं, और उनमें एक ताकत है जो मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को हासिल नहीं है। चुनाचे एक ऐसी किस्म भी सामने आई जो गैरुल्लाह का खौफ भी नहीं खाती लेकिन अल्लाह का खौफ भी नहीं रखती। वो लोग भी अगर आप मजीद तजिया करके देखें तो चूंकि अल्लाह का खौफ नहीं खाती इसलिए हर मुस्बित फैसले में वो गलत फैसला कर सकते हैं और गैरों पर जुल्म कर सकते हैं। उनके मनफी पहलू ये बन जाते हैं कि लोगों का खौफ रखने वाले बहुत से मजालिम से बच जाते हैं, और जो लोगों का खौफ नहीं खाते उनके लिए रहनुमा कोई चीज नहीं रहती। इसलिए अपने फैसलों में बाज दफा इंतहाई खौफनाक जालिमाना फैसला करते हैं और बाज दफा अपनी कौम के खिलाफ जालिमाना फैसला करते हैं। चुनाचे लेनिन ने जब गोलियां चलाई निहत्ते मजदूरों पर जिनके नाम पर ताकत हासिल की थी और रोटी के नाम पर उनसे ताकत हासिल करके इनकलाब बर्पा किया था, वो निहत्ते मजदूर खामोशी से एहतजाज करने के लिए जब गलियों में निकले और रोटी का मुतालबा कर रहे थे तो उन पर जालिमाना तौर पर गोलियां बरसाई गई। स्टालिन ने अपने जमाने में लखूखा आदमी कत्ल करवाए हैं इसलिए कि बेखौफी के नतीजे में बेरारवी भी पैदा हो गई, क्योंकि सही रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह का खौफ दरकार है। तो कुछ फायदे भी होंगे इंसानों से बेखौफी में और कुछ नुकसान भी हैं, और नुकसान अगर बिलमूम आप देखें तो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये लोग भी मोमिनों के मुकाबले पर कोई हैसियत नहीं रखते। चुनाचे आप और भी तजिया करके देखें मुल्क के अंदरूनी फैसले बैरूनी फैसले, जहां जहां भी इंसान का खौफ सामने आएगा वहां रानुमा फैसले गलत करने पर मजबूर होते चले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन की शान है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। जैसा कि मैंने बयान किया था, ये फरमाने के बाद ये तज्जिया करने के बाद कुरान करीम फिर मोमिनों को खूब अच्छी तरह मुतनब्बे करता है, कहता है जब हम कहते हैं कि तुम हमारे खौफ के सिवा किसी का खौफ नहीं रखते तो ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे लिए खौफ के सामान नहीं इकट्ठे किए जाएंगे, वो तो बहुत इकट्ठे किए जाएंगे, आगे भड़काई जाएंगी, धमकियां दी जाएंगी और बड़े गहरे मंसूबे बनाए जाएंगे कि तुम्हें जिस तरह भी हो सके सफ़े हस्ती से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, और हम तुम्हें ऐसी बातों को भी इत्तला देते हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, ऐसे खौफों से भी मुतनब्बे करते हैं जिन पर तुम्हारी नजर नहीं है। चुनाचे इस मजमून को बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है वद्दू मा अनितुम कद बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़्फ़ी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यन्ना लकुमुल आयात इन कुंतुम ताक़िलून। देखो वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, ये हम तुम्हें अभी बता देते हैं, ये ख्याल कर लेना कि तुम्हारी खैर सगाली उनके लिए उनके दिल में होगी, हरगिज नहीं। सिर्फ अल्लाह का खौफ रखने वाला है जो अपने सिवा दूसरों का भला चाहता है, जो खुदा का खौफ नहीं रखता और बंदों का खौफ रखता है वो आरी हो जाता है इस सिफत से कि किसी और का भला चाहे। कद बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, तुम्हें तो सिर्फ उन बातों का इल्म है जो अपनी जबान से कह चुके हैं और इकरार कर चुके हैं कि हम तुम्हें यह समझते हैं और तुम्हें यह समझते हैं, वहां तक तो तुम्हारी नजर है। लेकिन फरमाता है वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, तुम्हें नहीं इल्म लेकिन हमें इल्म है कि जो बातें वो जुबान पर नहीं लाए और उनके दिलों में खोल रही हैं वो उससे बहुत ज्यादा शदीद हैं जो वो जुबान से जाहिर कर चुके हैं। इसलिए कैसा अजीम शान कलाम है अल्लाह ताला का कि धोखे में रखकर किसी जरूरतमंदाना कदम की तरफ नहीं बुलाता, बहुत खोल खोल कर खतरात से आगाह फरमा रहा है, फिर कहता है अब अगर तुम में हिम्मत है कि सिर्फ खुदा का खौफ रखो और गैरुल्लाह का ना रखो तो आओ इस रास्ते पर, इससे कम दर्जे के लोग मुझे नहीं चाहिए चलने वाले। चुनाचे कहता है कि तुम्हें इल्म ही नहीं है कि कितने खौफनाक इरादे हैं, हमें इल्म है लेकिन साथ फिर ये वजाहत करने के बाद कहते हैं देखो हमने खोलकर बयान कर दिया बय्यन्ना लकुमुल आयात, हमने बय्यन्ना लकुम खूब खोल दी हैं निशानियां तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा फर्ज है कि अकल करो। लेकिन साथ ही एक खुशखबरी भी देता है, फरमाता है इन्नहुम यकीदुना कैदम व अकीदु कैदा फमाहिल काफिरीन आमिल उम्र वहदा, जब तुमने मेरा खौफ इख्तियार कर लिया और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि किस तरफ से हमला होगा और किस शक्ल में होगा क्योंकि ये सारे इरादे तुमसे मख्फी हैं, लेकिन हम मुझसे मख्फी नहीं हैं और चूंकि तुमने मेरा खौफ किया है इसलिए मैं तुम्हारा जामिन हो चुका हूं, अब मैं तुम्हारी खातिर तदबीरें करूंगा क्योंकि तुम्हें तदबीर का इख्तियार ही कोई नहीं, जब पता ही नहीं कि दुश्मन की तदबीर क्या है तो तुम मुकाबल की तदबीर क्या कर सकते हो। फरमाया इन्नहुम यकीदुना कैदन, हम तुम्हें बताते हैं कि खूब तदबीरें कर रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ लेकिन मैं भी तो गाफिल नहीं बैठा हुआ, वाकीदु कैदा और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूं फमाहिल काफिरीन आमिल उम्र वैदा, उनको रहने दो इस हाल में फिर देखना कि खुदा की तदबीर गालिब आती है या उनकी तदबीर गालिब आती है। यह फरमाने के बाद कि मां अनित्तुम, बद्दू मां अनित्तुम, वो तुम्हारे या तुम्हारा बुरा चाहते हैं। ये भी हमें अलग जगह तसल्ली दे दी कि तुमने उनके लिए तदबीर उनके खिलाफ नहीं करनी, ना तुम कर सकते हो। उसके बाद एक अजीब नसीहत फरमाई है या तवक्को रखी है मोमिन से, फरमाता है कि इन दुश्मनियों के बावजूद ये सारी बातें हम तुम पर खोल रहे हैं, जिस तरह हम उनके दिलों का हाल जानते हैं उस तरह तुम्हारे दिलों का हाल भी जानते हैं, कि तुम तो अजीब मखलूक हो। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों से एक अलग तख्लीक कर दी है, ये खल्क आखिर बन चुके हो तुम। तुम्हारी ये कैफियत है, हम गवाही दे रहे हैं कि तुम उनसे फिर भी मोहब्बत कर रहे हो, जानते हुए कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। बाज लोग समझते हैं कि ये नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, गोया खुदा ताला ने मना किया है कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उनसे, तुम तो मोहब्बत करते हो हालांकि वो मोहब्बत नहीं करते। हरगिज़ ये मज़मून नहीं, क्योंकि साथ ही फरमाया व तोमिनूना बिल किताबे कुल्ले ही। ये जो तुम्हारी कैफियत है ये इस वजह से नहीं है कि खुदा ताला के अहकाम के बाद हिस्सों पर तुम्हारी नजर है और बास पर नहीं है, ये कैफियत पैदा ही उनके दिलों में होती है जो कुल्लियतन किताब पर ईमान लाते हैं। किसी एक आयत के एक जेर जबर से भी फर्क नहीं करते, सारी किताबें किताब, सारे अहकाम इलाही, सारे अवामिर, तमाम नवाही पर नजर रखने के बाद फिर जो उनका दिल बनता है, जो शक्ल इख्तियार करता है, ये हम बता रहे हैं, वो ये है तुहिब्बूना हुम, ऐसे हो तुम लोग, हो अजीब गरीब लोग हो, तुहिब्बूना हुम वला युहिब्बूनकुम, तुम उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। यहां पहुंचकर एक और बात भी बड़ी खुलकर रोशन हो जाती है कि दावे तो सब करते हैं ईमान के और समझते हैं कि हम मोमिन हैं और दूसरा नहीं, लेकिन इलामतें इतनी मुश्किल रख दी अल्लाह ने कि वो हर दावेदार जो सच्चा नहीं है अपने दावे में इख्तियार ही नहीं कर सकता। मोमिन की ये इलामत बताई जो सच्चा है कि वो गैर से नफरत नहीं करता, और बावजूद इसके नफरत नहीं करता कि शदीद गालियां देता है गैर उनको, उनके खिलाफ अपने बद इरादों को खुलम खुला जाहिर करने लग जाता है, और उसके बावजूद भी उनसे नफरत नहीं करता कि अल्लाह ताला उनको मुतले कर रहा होता है कि इनके दिलों में इससे भी ज्यादा बद इरादे हैं। इन सारी बातों को बयान करने के मान बात फरमाया, सुन चुके हो ना ये सारी बातें ऐ मोहम्मद, अब मैं बताता हूं कि तुम्हारा और तुम्हारे मानने वालों के दिलों की यह कैफियत है कि इसके बावजूद इनसे मोहब्बत करते हो और मोहब्बत करते रहोगे और इस बात से बेनियाज होगे कि ये तुमसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते। यह है ईमान वालों की निशानी, और जो ईमान नहीं लाते उनकी निशानी ये रख दी कि वो अपने से गैर के लिए नफरत रखते हैं, उनके लिए बदतदबीरें सोचते रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और लुत्फ उठाते हैं इस बात में कि किसी को नुकसान पहुंचाएं। तो इससे बड़ी खुली सूरज की तरह रोशन दलील हक और बातिल में तमीज करने वाली हो कौन सी सकती। बस खुशखबरी हो उस जमात को जिसके हक में कुरान ये दलाइल पेश कर रहा है, बेनियाज हो जाती है वो जमात गैरों की जुबान से, उसको कोई परवाह नहीं रहती इस बात की कि दुनिया की कोई ताकत उसको क्या समझती। वो इलामतें जो कुरान ने जाहिर फरमा दी हैं वो उनके अमाल में बोल रही होती हैं और तस्दीक कर रही होती हैं कि सिर्फ यही मोमिन है, सिर्फ यही मोमिन है, सिर्फ यही मोमिन है और सिर्फ यही मोमिन है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر